ओम शांति। ज़ेन मास्टर कभी हुए थे जिनका नाम था बोकाजो। तो ये जो ज़ेन मास्टर था बोकाजो, एक दिन सुबह सुबह उठे और उठते ही उनके जो प्रधान शिष्य थे, उस प्रधान शिष्य को बुलाया और उनको कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है, क्या तुम उस स्वप्न की व्याख्या कर सकते हो। तो वो जो शिष्य था उसने कहा कि थोड़ा ठहरिए, पहले मैं आपके लिए हाथ मुंह धोने के लिए पानी लेकर आता हूं, आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद मैं स्वप्न की व्याख्या करूंगा। तो जब वो हाथ मुंह धो रहे होते हैं, उसी समय एक दूसरा शिष्य वहां से गुजर रहा होता है, तो बोकाजो उस दूसरे शिष्य को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है, क्या तुम उस स्वप्न की व्याख्या कर सकते हो। तो वो शिष्य कहता है हाँ जरूर, परंतु पहले मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं, पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं आपने जो स्वप्न देखा उसकी व्याख्या करूंगा। तो बोकाजो अपने दोनों शिष्यों से कहता है, बहुत खुश हो जाता है, कहता है मैंने आज तक तुम्हें जो शिक्षाएं दी वो सफल हो गई। कैसे? कैसे? वो कहता है कि मैंने आज तक तुम दोनों को जो शिक्षाएं दी वो सफल हो गई है। क्या स्वप्न की भी कभी व्याख्या की जाती है जो कि असत्य है? व्याख्या सत्य की जाती है। यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने ये स्वप्न देखा, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या व्याख्या है? अर्थात तुम सोए हुए हो, अब भी स्वप्न हो गया, बात पूरी हो गई, अब उसकी व्याख्या करना। इसके लिए पहला शिष्य कहता है कि शायद आप अब तक भी सो रहे हैं, शायद आप अब तक भी स्वप्न ही देख रहे हैं, इसके लिए मैं पहले आपके लिए हाथ मुंह धोने के लिए पानी लेकर आता हूं, ताकि आपकी ये जो निद्रा है, ताकि आपका ये जो स्वप्न है वो टूट जाए। और दूसरे शिष्य से वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे स्वप्न की व्याख्या करोगे। तो वो कहता है कि पहले मैं आपके लिए क्या करता हूं, चाय पानी लेकर आता हूं थोड़ा, ताकि शायद नींद अभी भी बाकी है, जो चला गया, जो छूट गया, जो स्वप्न था वो सब नींद में था, अज्ञान में था, व्यर्थ था, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, चर्चा करना, उसकी व्याख्या करना, ये सब क्या है? निद्रा, मूर्छा, बेहोशी, कल की अव्यक्तवाणी, वेट बढ़ने के कारण बताए थे बाबा ने, कौन कौन से वजन बढ़ने के कारण सुनाए थे, कौन कौन से कारण थे? चार। सबसे पहले तो व्यर्थ संकल्प, संकल्प का वेस्टेज। दूसरा दूसरा क्या था? सबने मुरली पढ़ी है कल और सुनी भी है, दूसरा क्या था? बोल नहीं था, समय, टाइम, क्या कर रहे हैं हमारे समय के साथ, कितना सफल हो रहा है और कितना वेस्ट जा रहा है। कौन से संकल्प कर रहे हैं और समय किस तरह गवा रहे हैं, किन बातों में जा रहा है, कौन सी बातें चल रही है, कौन सी वार्तालाप, कौन सी टॉक्स व्यर्थ है या समर्थ है, स्व है कि पर है, किसकी बातें चालू है। वेस्टर्न फिलोसोफर कैंट हुआ है कभी, इमैनुअल कैंट, उसने कहा है द अदर इज हेल, जो दूसरा है वो नर्क है, जो पर है वो नर्क है, जो कुछ करना है स्व के साथ, दूसरे का छोड़ो, वो जो चिंतन है व्यर्थ है, स्व। तो सबसे पहला बाबा ने बताया था संकल्प, दूसरा बताया था समय, तीसरा बताया था व्यर्थ के वजन बढ़ने के चार कारण बताए थे, तीसरा संबंध और संपर्क, जिस तरह के हमने संबंध बना रखे हैं आत्माओं के साथ, जिन आत्माओं के हम संपर्क में हैं, वो किस क्षेत्र में है, सेवा के या व्यर्थ के। वहां जाते ही आत्मा चार्ज हो जाती है या उसकी शक्ति ड्रेन हो जाती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। उस वातावरण में जाते ही वो सारे वातावरण, वो सारे व्यक्ति, वो सारे लोग जिनके पास जाकर व्यर्थ बात करने की उत्सुकता होती है, शायद वो व्यर्थ है। और वही कारण है कि हमारा वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्वयं के जीवन में चेक करना है कि कौन सा वो संबंध है, कौन सा वो संपर्क है जो व्यर्थ को जन्म दे रहा है जीवन में। और चौथा कौन सा था, संबंध, चौथा था एक शक्तियां, हमारी शक्तियां, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, किस तरह प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं को इतना तो नहीं थका दे रहे हैं कि आध्यात्मिक साधना करने के लिए समय ही नहीं रहा। बोल में इतना तो नहीं थका दे रहे हैं कि आत्मा में ऊर्जा ही समाप्त हो रही है। संकल्प इतने तो तेज नहीं दौड़ रहे हैं कि जहां पर व्यर्थ का ही विस्तार हो रहा है। जहां जहां हमारी ये चार बातें वेस्ट हो रही है, वहां पर क्या होगा, वेट बढ़ेगा। तो कल बाबा ने क्या कहा था, जोड़ी जमेगी नहीं, यदि एक हल्का और दूसरा भारी हो, मोटा हो, ऐसी अगर जोड़ी है, ये जोड़ी नहीं शोभेगी। जैसा वो डबल लाइट है, वैसे ही हमें भी डबल लाइट होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, रोज एक्सरसाइज, व्यायाम, स्पिरिचुअल ड्रिल, कौन सी, अशरीरी बनने की, कौन सी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। एक अवस्था है निराकार परमधाम की, दूसरी अवस्था है सूक्ष्म वतन की, जिसके लिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया है चमकीला वतन, तीसरा है साकार कर्म योगी की अवस्था, और चौथी एक अवस्था है जिसको बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी। तो ये क्या करना है, बार बार ड्रिल। तीन प्रकार की ड्रिल्स होती है। एक होती है फिजिकल ड्रिल, एक होती है मेंटल ड्रिल, एक होती है स्पिरिचुअल ड्रिल, एक है शारीरिक। यदि एक्सरसाइज करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। उसमें बहुत सारी चीजें भी आ जाती है। उसके ऊपर की एक ड्रिल है मेंटल एक्सरसाइज। वो क्या है मेंटल ड्रिल? क्या है? ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन। मन को बहुत सारे काम देने हैं, नहीं तो उसका स्वभाव है भटकना। उसको कुछ कुछ याद करने के लिए देना है रोज, आज का वरदान, आज का स्लोगन, काम देने हैं उसे। वो एकदम आलसी, अंग्रेजी में कहते हैं माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां सबसे कम तकलीफ हो ऐसा ही मार्ग वो जाना चाहता है, जहां कोई भी बाधा ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई उसे छेड़छाड़ ना करे, कोई उसे काम ना दे, बस आराम से सब कुछ। ये उसका स्वभाव है। माइंड ट्रेनिंग, मेमोरी ट्रेनिंग। मेमोरी जो होती है वो मसल की तरह है। यदि मसल को एक्सरसाइज ना करो तो क्या हो जाएगा? बहुत ही ढीली ढाली हो जाएगी। यदि मन की जो मसल है उसकी भी एक्सरसाइज ना करो मेमोरी की, तो वो भी वैसे ही हो जाएगी। जब जीवन में परिस्थितियां नहीं है तब ही हमको ज्ञान याद नहीं, तो जब परिस्थितियां आएगी तो ज्ञान कैसे याद रहेगा? इसके लिए रोज की मुरली से पावरफुल महावाक्य को क्या करना है? निकालना है और फिट करना है। इधर एक महावाक्य बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में काम आ जाएगा। छोटा सा महावाक्य जब बहुत विकराल परिस्थिति अचानक जीवन में आ जाए, वो एक छोटा सा महावाक्य कभी पढ़ा था बहुत पहले, अचानक वो स्मृति में आ जाए, क्योंकि उस पर उस समय काम किया था, चिंतन किया था, अनुभव किया था, वो शक्ति का रूप धारण कर लेगा। एक महावाक्य केवल। मेंटल ड्रिल, और तीसरी है स्पिरिचुअल ड्रिल। स्पिरिचुअल ड्रिल ऐसी आध्यात्मिक कवायद, आध्यात्मिक कसरत। बार बार, अभी अभी आत्मा यहां, अभी अभी निकलकर सूक्ष्म वतन, अभी अभी परमधाम, फिर से इधर। बार 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 देह से डिटैच होने का अभ्यास। तो ये बाबा ने यहां पर बात की। अब मुरली की तरफ चलते हैं शुरुआत से। कौन किसको देख रहा है या कौन किससे मिलने आया है? कल की अव्यक्तवाणी। बाबा किस रूप में मिलने आया है? आया था कल माशुक आया था। किसने मिलने? आशिकों से मिलने। बाबा ने भक्ति मार्ग की एक बात कही है और प्रश्न पूछा है, बताओ ये सत्य है, ये भक्तों ने गलती की है या भक्त राइट थे? बाबा ने पूछा है भक्ति में ये जो बात आई है, ये भक्तों की गलती है या राइट है? कौन सी बात थी? वो सर्वव्यापी की बात नहीं थी, वो बहुरूपी की बात थी। भक्ति मार्ग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमको ज्ञान में आने के बाद पता चला कि वो झूठ है, परंतु ज्ञान की गहराई में जाने के बाद पता चला कि वो भी राइट है। पहली बात जो मुरली में आई है, भक्ति में हमने सुना था कि भगवान बहुरूपी है। विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरि विविध शरीरा, अनेक अनेक रूप धारण करता है वो। ये भक्ति मार्ग में। फिर ज्ञान में आए तो पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, वो अनेक अनेक रूप नहीं धारण करता है। परंतु जब ज्ञान की गहराई में गए कुछ समय के बाद तो पता चला, हाँ, क्या पता चला? हाँ, वो अनेक रूप धारण करता है, कभी क्या बनकर आता है तो कभी क्या बनकर आता है। आज सुबह मुरली में कहा था बाबा ने, बाप कौन है? इंश्योरेंस मैग्नेट। बाप कौन है? खिवैया। अलग अलग रूप धारण करता है भक्ति मार्ग में। ये पहली पॉइंट। दूसरी, भक्ति मार्ग में हमने सुना था भगवान सर्वव्यापी है। फिर ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के बाद पता चला, बिल्कुल नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर ज्ञान की गहराई में गए, तुम तो यही कही बाबा, मेरे आस पास हूं हो, जिधर देखता हूं उधर बस तू ही तू है, उठता हूं तो तुमको देखता हूं, चलता हूं तो तुम वहां हो, एक एक के दिल में कौन है, ये बाबा तुमने कैसा जादू फेरा है। तीसरा, भक्ति मार्ग में कहा हुआ है कि भगवान हर हृदय में बैठा हुआ है, दो चीजें, एक आत्मा भी है और परमात्मा, दोनों हृदय में है। ज्ञान में आए तो पता चला नहीं, केवल आत्मा है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो उधर है, वो यहां है ही नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, तो घटघट में बैठा उसको माना हमने, तो ज्ञान में आते ही पता चला बिल्कुल नहीं, घटघट में नहीं है। परंतु जब ज्ञान की गहराई में गए तो पता चला हर दिल में तो वही है। भक्ति मार्ग में हमने सुना था कि वो सर्वशक्तिवान है, जो चाहे वो कर सकता है। फिर ज्ञान में आए और ज्ञान में पता चला कि वो सर्वशक्तिवान, बाबा कहते हैं मैं कोई मरी हुई चीटी हुई थोड़ी ना, मैं इसको ठीक जिंदा करूंगा, ये मेरा काम थोड़ी ना है। परंतु फिर ज्ञान की गहराई में गए और पता चला कि वो कुछ भी कर सकता है, वही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। इतना गहरा प्यार है, इतना गहरा प्यार है कि भगवान उस प्यार में कुछ भी करने के लिए राजी है। अगला, भक्ति मार्ग में हमने सुना था वो कहते थे भगवान जानी जाननहारे, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ज्ञान में आए पता चला भगवान खुद कहता है मैं जानी जाननहार नहीं हूं, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, तुम्हारे माइंड में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे क्या लेना देना। फिर ज्ञान की गहराई में गए और जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में गए पता चला साकार महावाक्य मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, पत्ते पत्ते का उसे पता है। भक्ति मार्ग में गाय ने यदि ये चीटी छोटी सी पैरों में घुंघरू बैन ले तो उसके घुंघरू की आवाज भी उस तक पहुंचती है। एक एक के मन में क्या संकल्प चल रहे बाप दादा जानते हैं, अव्यक्त महावाक्य पर बताएंगे नहीं। यदि कोई बाप के सामने अभी आ जाए तो बाप ये बता सकते हैं कि ये क्या पद पाएगा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ मैं जानी जाननहार नहीं हूं। तुम जो लिखते हो वो पहले ही बाप के पास पहुंच जाते हो, पोस्ट तो बाद में आती है। और क्या सुना था भक्ति मार्ग में, जो बाद में पता चला ज्ञान मार्ग में वो बिल्कुल झूठा है, परंतु बाद में और पता चला कि वो भी राइट था। ज्ञान मार्ग भक्ति में सुना था शिव और शंकर एक है, ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के बाद पता चला कि ये दोनों अलग है। उस पर हमने बहुत भाषण भी दिए और बहुत कोर्स में वाद विवाद भी किया और फिर आगे बढ़े और आगे बढ़े और फिर गहराई में गए और पता चला वो शंकर तो मैं ही हूं, वो तपस्वी तो मैं ही हूं और मेरी ही अंतिम अवस्था कौन सी है, वो और मैं कंबाइंड एक ही हूं। कैसा रहस्यमय ज्ञान है। तो बाबा कहां आए हैं, सागर के कंठे पर आए हैं, कहां आए हैं पहाड़ी पर आए हैं, कहां आए हैं चांदनी रात है और पहाड़ी है और सागर का कंठा है और एक गीत बज रहा है। कौन सा गीत, हर एक का अपना अपना है गीत, हर एक का गीत अपना अपना, और बाबा सबके गीत का क्या करता है, एक साथ रिस्पॉन्ड करता है, सुनता है। तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, कौन कौन सी जगह में होता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों? शांतिवन में, अच्छा, डायमंड हॉल में एक। दूसरा, संगम पर कहां? मधुबन में। मधुबन में सब आ गया। कहां कहां मिलन होता है भगवान और आत्माओं का? परम धाम में, सूक्ष्म वतन में। चौथा, कहां मिलन होता? अमृत वेला कहां पर, किधर, कहां मिलन होता है? किधर? जहां याद करेंगे वहां, हर जगह हर समय मिलन हो सकता है। तो बाबा आज माशुक आशिकों से मिल रहा है, तो गुप्त स्थान पर मिल रहा है, पहाड़ी है, चांदनी रात है, और क्या है, सागर है, सागर का कंठा है, ऐसी जगह पर यह मिलन हो रहा है। और इस मिलन में बहुत सारी बातें हुई है जिसकी हम चर्चा करेंगे। पहाड़ी कौन सी है? ऊंची स्थिति की पहाड़ी है, श्रेष्ठ स्थिति है। रात कौन सी है और चांदनी कौन सी है? शीतलता का स्वरूप है। सागर कैसा है? सागर कैसा है? संपन्न है। सागर कैसा है? गुण और शक्तियों का सागर है। सागर कैसा है? बेहद का है। सागर कैसा है? अखूट है। रंग क्या है सागर का? नीला। सफेद? सफेद किसने कहा? अच्छा, पहले तो ये बताओ, सागर सफेद होता है या नीला होता है? पानी का रंग कौन सा है वो बताओ पहले। सागर जो है वो नीला क्यों है? नहीं, आसमान का कलर पड़ रहा है उसमें, ये सबसे छोटा उत्तर है, ये उत्तर वास्तविक नहीं है। ओशन या सागर का रंग नीला क्यों है, इसका उत्तर ये कहना कि आकाश पड़ रहा है, ये KG1 KG2 का उत्तर है, ये उत्तर सही नहीं है। साइंटिफिक उत्तर क्या है? साइंटिफिक उत्तर हमारी आंखों का रंग क्यों बदलेगा? वास्तव में पानी का जो रंग है, दूसरा उत्तर, पहला तो बताया, दूसरा उत्तर है कि पानी का वास्तविक रंग कुछ अर्थों में नीला ही है। वो परंतु वो रंग तभी दिखता है जब बहुत बड़ा वाटर का सरफेस हो, बॉडी हो, वाटर बॉडी, तभी वो उसका नीला रंग। वास्तविक रंग कलरलेस नहीं है, बेरंग नहीं है, वो नीला है। और तीसरा साइंटिफिक उत्तर जिसको कहते हैं, पानी पर जो किरणें पड़ती है सूर्य की, वो जो लाल किरणें हैं उनको अपने अंदर सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है, परंतु जो नीली और हरी किरणें हैं उनको रिफ्लेक्ट, जिसको कहते हैं, परावर्तित करता है, नीली और हरी। इसके लिए जो वो फेंकता है वही रंग उसका नजर आता है। इस सागर का रंग कौन सा है? किस अपना शिव सागर, उसका कौन सा रंग है? लाल लाल सतरंगी है, सप्तरंगी है। सप्तरंगी भी है तो रंगों से परे भी है। जो रंग से, जो रंग का चश्मा पहनो वैसा वो दिखेगा। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये जो मीटिंग हो रही है दोनों की, किसकी किसकी? माशुक और आशिक की। अंग्रेजी में एक शब्द है रेंडवो, सीक्रेट मीटिंग ऑफ लवर्स, दो प्रेमियों की आपस में जो मुलाकात होती है गुप्त रीति से, उसके लिए वो शब्द है। बाकियों के लिए भी कहा जाता है, बाकी मीटिंग्स के लिए, पर खास इस मीटिंग के लिए जिसे कोई देख नहीं रहा है, उनके बीच में कुछ बातें हो रही है, उन बातों को कहते हैं स्वीट नथिंग्स। तो यहां पर ऐसी 7 बातें हुई है। आशिक आशिकों के बीच और माशूक के बीच। तो वो कौन कौन सी सात बातें हैं, या कहो बाबा का ये अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। वो माशूक जब आया और जब आशिकों से मिला तो उसने सात बातें देखी। पहली, उसने देखा कि माशूक एक है और आशिक अनेक है। ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन है इस मीटिंग में। वो इस मीटिंग में भी साक्षी है, मीटिंग है माशूक और आशिकों की। तो वो कहता है कि वो एक है और मिलने वाले आशिक कितने हैं, अनेक है। उदाहरण एक जगह दिया है पटरानियों का, कितनी थी, कितना थी, 16,000 थी या 16,100 थी, ये नया फिगर अभी किसने लाया, 16,108। महाभारत और भागवत में लिखा है 16,000, विष्णु पुराण में लिखा है 16,100 कृष्ण की पटरानियां। तो बाबा ने उनको भी याद किया है। तो शिव बाबा एक और बाकी सब क्या है, पटरानियां। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, उसका दूसरा अवलोकन, देने वाला जो दे रहा है कैसे दे रहा है, नंबर वन, और लेने वाले जो ले रहे हैं वो नंबर वार। अभी आप सबके लिए होमवर्क, जो लिखेंगे, जो लिखना चाहे वो लिखे, नंबर वार ये शब्द बाबा ने कब कब और किस किस अर्थों में आज तक प्रयोग किया है। नंबर वार जो शब्द है आज तक बाबा ने किस किन 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 बातों के लिए कहा है, जो लिख सकते हैं वो इस पर चिंतन करें। नंबर वाइज, नंबर वार, ना तो हिंदी साहित्य में ना तो इंग्लिश साहित्य में नंबर वाइज शब्द है कहीं पर। ये बाबा की यूनिक डिक्शनरी है, नंबर वार हिंदी में, नंबर वाइज इंग्लिश में। तो ये कहां कहां आज तक बाबा ने कहा है उस पर सभी चिंतन करें। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पॉइंट, तीसरा ऑब्जर्वेशन, सभी प्यार करने वाले हैं परंतु प्यार निभाने वाले जो है वो बहुत बहुत कम है। तोड़ निभाने वाले, प्यार निभाने वाले कम है, करने वाले बहुत है। सभी कहते हैं कि सीना चीर के दिखा देंगे तो अंदर शिव बाबा है, कहने वाले बहुत है, बट नॉट एवरी वन हु कमेट एंड सेड लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट कहता है कि हर एक नहीं जो आके कहता है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, केवल नारे लगाने वाले नहीं, परंतु ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर, जो मेरे पिता की मत पर चलता है केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, बाकी केवल कहने वाले नहीं। ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। अगला ऑब्जर्वेशन, कुछ है बच्चे जो मेरा माशूक कहते हैं, फेरी लगाते हैं, थक जाते हैं, फिर कहते हैं, क्या कहते हैं फिर, मेरा माशूक। ये बाबा अपना डिटैच्ड होके ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। पहले तो बहुत महिमा की कि ये मिलन है माशूक का और आशिकों का, ऐसे हो तुम वैसे हो तुम, नदी ये है पहाड़ वो है, चांदनी है रात है गीत है, बाबा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, परंतु ऑब्जर्वेशन उसके क्या क्या है कि कोई कोई है फेरी लगा के चले जाते हैं, थक जाते हैं। अगला है नाज नखरे, क्या है अगला, नाज नखरे, सात प्रकार के नाज नखरे बताए हैं। अब आप बताओ कौन कौन से, मैं जो हूं मैं जैसी हूं मैं आपकी हूं, गलती कर दो पहले फिर बाद में बाबा, मैं जो हूं मैं जैसी हूं मैं आपकी हूं, पहले सब कुछ कर लो, तब श्रीमत को याद नहीं थी, अब जब हो गया तब उसके बाद में अब बाबा बस आप ही सब कुछ हो, आपके सिवा मेरा कोई है भी तो नहीं वैसे भी। ये पहला बीच का है वैसे, पर चलो फिर भी। दूसरा हम तो ऐसे ही चलेंगे, ये पहला, हम तो ऐसे ही चलेंगे, ये है नाज रख रहे। जो करना है कर लो, जो क्लास में सुनाना है सुना दो, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हमारी ये बचपन की आदत है, हमको तो यही पसंद है खाना। दूसरा हम तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे जो करना है करो। तीसरा हम तो ऐसे ही है। चौथा बाप की बातें बाप को ही सुनाने में नाज, बाबा आपने ही कहा था इस मुरली में, डेट ये है, आपने ही कहा था मुरली में इस डेट में, आपने ही कहा था ऐसा कि अगर परिस्थिति हो तो बाहर का खा लो बाप को याद करके, डबल रोटी सामने है बाबा को याद करो और खा लो, आपने ही कहा था। डेट भी है मुरली की, कटिंग रखी हुई है, ऐसे पावरफुल महावाक्य निकाल के रखे हैं, काम आएंगे, कोई कह दे तो दिखाने के लिए, बाबा ने तो कहा है। अगला हमें बदलने का काम आपका है, छठवां, आप आई तो इसलिए हो ना, विश्व परिवर्तक हो तो बदलो हमको, हम तो खड़े हैं बदलने के लिए। अगला हमारे ऊपर जो दाग लगे हैं उसको अब आप ही मिटाओ, जो दाग लगे हैं वो आप ही मिटाओ। तो ये कितने हो गए, सात, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें बदलने का काम आपका है, जो हूं जैसा हूं आपकी हूं, दाग मिटाने का काम आपका है, और बाप की बातें बाप का भी बाप बनने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, ये बाबा की ऑब्जर्वेशन है, डिटैच्ड होकर बाबा देख रहा है कि ये बच्चे ऐसा ऐसे करते फिर भी कितना धैर्यवत पिता है। सब ये सारे बाबा ने महावाक्य कहां से लाए, सुने तो होंगे ना जरूर, कोई ना कोई तो कह ही रहा होगा कहीं ना कहीं से, ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है वो, मुख से नहीं तो मन से तो निकल ही रहा होगा, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही चलेंगे, अब हमको आप बदल लो, मैं जो हूं मैं जैसा हूं आपका हूं आपकी हूं, आप देख लो अब। नाज नखरे। अगला है जोड़ी में समानता, उसमें दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। जोड़ी में समानता में पहली समानता कौन सी होनी चाहिए, एक जो है वो सजा सजाया है और दूसरा जो है वो गैर सजा सजाया हुआ है, श्रृंगारा हुआ नहीं है, तो ये जोड़ी कैसी लगेगी, जमेगी नहीं जोड़ी, दोनों समान चाहिए। एक अव्यक्त मुरली है, 9th जनवरी 1980 डेट आप लिख लो, क्योंकि ये मुरली आपको जाके पढ़नी है, 9th जनवरी 1980 जिसमें बाबा ने पांच प्रकार के ड्रेसेस बताए हैं जो आपको पहनने नहीं है, सभी अगर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करें एस से चालू होते हैं। पहली ड्रेस है एस अर्थात सॉइल अर्थात मिट्टी वाली ड्रेस, मिट्टी वाली ड्रेस अर्थात देहभान की स्मृति वाली ड्रेस तुम्हें नहीं पहननी है, ऐसी ड्रेस कि जिसमें देहभान की स्मृति आए। हमको याद है ये मुरली हमने इसी मेडिटेशन हॉल में रिवाइज कराई थी कुछ समय पहले, लगभग एक साल पहले, तब एक उधर कराई थी, अच्छा छोटे हॉल में, तो वहां पर हमने एक दृश्य बनाया था। पांच महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, आर्टिक महासागर, सदर्न महासागर, पांच महासागर है। एक एक ड्रेस को एक एक सागर में डालने का की ड्रिल कराई थी, पांच ड्रेसेस। पहला ड्रेस है सॉइल अर्थात मिट्टी वाली ड्रेस, दूसरी ड्रेस है स्मेल अर्थात बदबू वाली ड्रेस, बदबू अर्थात देह और देह के संबंध में लगाव, ये है बदबू वाली ड्रेस। यदि ये ड्रेस हमने पहनी है, यदि हमारा आत्माओं से किसी से लगाव, किसी से झुकाव है, अर्थात हमने बदबू वाली ड्रेस पहनी है, स्मेल। तीसरा है एस फॉर स्किन, चमड़ी वाली ड्रेस, चमड़ी को देखना, चमड़ी की ओर आकर्षित होना। इसे बाबा ने कहा था, ये चमड़ी वाली आंख है, आंख चमड़ी को देखती है, ये ड्रेस पहनी हुई है तो इसको फेंक दो निकालकर। तीसरा है स्किन, चौथा है स्टेन। स्टेन में पहला स्टेन यहां है स्टेन, बैड स्टेन अर्थात वो लास्ट है गंदे दाग, गंदे दाग वाली ड्रेस अर्थात दूसरों के अवगुणों को धारण करने वाली वृत्ति, दृष्टि या ड्रेस। और चौथा है फिर से स्टेन, परंतु ये सबसे खतरनाक है, स्टेन डैश ब्लड, खून के धब्बों वाली ड्रेस अर्थात बार बार विकर्म करना, बार बार पाप करना, बार बार श्रीमत का उल्लंघन करना अर्थात भगवान के महावाक्य आत्मघात करना, आत्महत्या करना। ये जो ड्रेस है ये लास्ट ड्रेस है, स्टेन्ड अर्थात ब्लड स्टेन्ड, खून से रक्त रंजित, ऐसी खून से सनी हुई ड्रेस। तो पहली बताई मिट्टी वाली देहवान की स्मृति, दूसरी बदबू वाली, तीसरी चमड़ी वाली, चौथी गंदे दाग वाली और पांचवी खून के दाग वाली। कौन सी पहनेंगे पांचों में से? अच्छा पांचों में से पूछा हमने तो बाबा ने कहा था इन ड्रेस को छोड़ो और चमकीली ड्रेस धारण करो, चमकीले वतन में आ जाओ, चमकीले रूपधारी बन जाओ। घृणा आनी चाहिए इन ड्रेसेस से, कब तक पहने रहे वही ड्रेस, बदबू आ रही है, चमड़ी है, खून के दाग, गंदे दाग, चमड़ी। जन्म जन्म तो यही किया, अब भी वही करना है। नाइन्थ जनवरी 1980, अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार, अव्यक्तवाणी। तो ऐसे ये, और सातवां लास्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन में बाबा के अवलोकन, जिसकी चर्चा हमने कर ली थी, असमानता जोड़ी में वजन, एक है हल्का दूसरा है, एक है हल्का दूसरा है वेट वाला, उसके लिए रूहानी एक्सरसाइज करो। तो बाबा ने ऐसे सात बाबा के ऑब्जर्वेशन है, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्या बताया कि वो एक और आशिक अनेक, दूसरा देने वाला दे रहा है परंतु लेने वाले नंबरवार, तीसरा प्यार करने वाले बहुत है परंतु निभाने वाले बहुत कम है, चौथा फेरा लगाने वाले आए, पहले कहा मेरा माशूक, फेरा लगाया, थक गए, फिर भी कह रहे मेरा माशूक, बस इसी में जीवन जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे। अगला नाज और नखरे, तो यहां पर हमने कितने नाज नखरे गिनाए? सात। अब आप सबके लिए होमवर्क, मेरे नाज नखरे कौन कौन से हैं? मेरे अर्थात हर एक अपने आप से पूछे मेरे अपने कौन कौन से नाज नखरे हैं? आप सबको हम टॉपिक दे रहे हैं, जो लिख सकते हैं इस पर लिखे, नाज नखरों के बादलों के पीछे छिपता तपका सूर्य, नाज नखरों के बादलों के पीछे छिपता तपता तपका सूरज, तपका सूर्य। इस टॉपिक पर जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फिर बताया असमानता, एक सजा हुआ, दूसरा श्रृंगारी नहीं है, ऐसा ऐसे ये जो पांच प्रकार के ड्रेस बताए इनको छोड़ देना है। पहले तो ये देखना इन पांच में से मैंने कोई ड्रेस तो नहीं पहन रखा है। अवगुण को धारण करने वाली दृष्टि ड्रेस, किसी में लगाओ ड्रेस, किसी के किसी देहभान की स्मृति में रहना, अभी नहीं है परंतु यादें है, मेमोरीज, उसमें रमन कर रहे, वो मिट्टी वाली ड्रेस। बार बार श्रीमत की अवज्ञा, खून से सनी हुई ड्रेस। तो इन ड्रेस को छोड़ना। फिर वजन कम करने की बात, जिसकी हमने चर्चा थोड़ी की है। देखना है मेरा टाइम, मेरा समय कहां वेस्ट जा रहा है, ऐसे में क्या करूं, किस तरह सेवाएं करूं कि जिसमें समय भी कम लगे, जिसमें एनर्जी भी कम लगे, जिसमें शक्तियां, एनर्जी, पैसा, हर चीज कम लगे और सेवा भी बहुत अच्छी हो। एक मेंटल हॉस्पिटल में एक बार, मेंटल हॉस्पिटल पता है ना, मानसिक रुग्णालय, वहां पर एक साइकेट्रिस्ट होता है, उसका मित्र उससे मिलने आता है। तो वो अपने साइकेट्रिस्ट मित्र से पूछता है कि आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि किसको भर्ती करना है, कौन पागल है और कौन नहीं है, ये आप डिसाइड कैसे करते हो? तो वो कहते हैं बहुत सिंपल है, हमारे पास एक बहुत बड़ा टब है बाथरूम में जिसमें हम पानी भर के रख देते हैं और वहां पे एक चम्मच रखते हैं और एक बकेट रखते हैं। जो भी आता है व्यक्ति यहां पर उसको कहते हैं कि इस बकेट, इसको टब को आप खाली करो। एक तो चम्मच है उससे कर सकते हो या तो फिर बकेट है, जो जिससे करेगा उस आधार से हम निर्णय करते। तो वो मित्र कहता ये तो बहुत ही आसान है, जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो बकेट यूज करेगा। वो कहता है बिल्कुल रॉन्ग, जो नॉर्मल होगा वो बटन ऑन कर देगा, बटन ऑन करते ही वो पानी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहां हम बात कर रहे थे समय की, समय को बचाने की। क्या हम करें, कौन सी नवीनता इन्वेंशन लाए सेवाओं में, ट्रैवलिंग में, काम में, दिनचर्या में, बातचीत में, पढ़ने में, स्टडी में, संबंध संपर्क में, जिससे समय बचे, शक्ति बचे, टाइम वेस्ट ना हो। इसके ऊपर स्वयं चिंतन करना है। यहां पर मुरली पूरी होती है। फिर बाबा ने बात की गुजरात वालों से, क्या कहा उनको, गरबा। दिल्ली वालों से क्या कहा उनको, अभी है सागर का, नदी का किनारा, जमुना का किनारा, बाद में होगा सागर का किनारा। और मुख्य जो चर्चा की बाबा ने वो की किसके साथ, मधुबन निवासियों के साथ। क्या कहा उनको, क्या कहा बाबा ने, कहा मधुबन निवासियों के टाइटल क्या है, मधुबन निवासियों के टाइटल क्या क्या है। तो पहले आप बताएंगे, हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने मिलकर मधुबन निवासियों के 108 टाइटल निकाले हैं और जिन्होंने ये निकाले हैं वो मधुबन निवासी नहीं है, बाहर रहने वाले हैं बहुत सारे, उन्होंने ये टाइटल मधुबन निवासियों के लिए निकाले हैं। तो पहले तो जो मुरली में आए हैं वो टाइटल आप बताओ, उसके बाद में हम ये 108 की लिस्ट आपको बताएंगे क्या क्या टाइटल है मधुबन निवासियों के। मास्टर ब्रह्मा, मधुबन है फोटोस्टैट मशीन और फोटो कॉपी, और मधुबन निवासियों, चलो मुरली से बाहर मधुबन निवासियों के टाइटल, हर एक मधुबन निवासी जो भी यहां है, चाहे सेवाधारी हो या कोई भी हो, जो जिस समय मधुबन में है अर्थात वो मधुबन निवासी है। तो अपने टाइटल्स क्या क्या है जल्दी बताओ। हाँ उधर से चालू करते हैं या पहले भाइयों की तरफ से। माता है, क्या क्या टाइटल है आपके? मधुबन निवासियों, ब्राह्मणों के जनरल टाइटल नहीं, मधुबन में रहते समय मधुबन निवासियों के टाइटल वो बताने हैं। मैं होली हंस हूँ, सागर के कंठे पर रहने वाला होली हंस हूँ। और मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। और जनरल टाइटल नहीं बताओ, मधुबन निवासियों के, मधुबन में रहते समय मधुबन के टाइटल। और उसमें मधुबन शब्द जोड़ो थोड़ा। चैतन्य बगीचे का चैतन्य फूल हूँ, बेहद के बगीचे का, या फिर मैं संगम युगी मुगल गार्डन का क्या हूँ, रूहे गुलाब हूँ। ये मुगल गार्डन है ना मधुबन। और ज्ञान खजाने से संपन्न मधुबन निवासी, जो मधुबन से पहले मिलते जुलते हो। जनरल तो सामान बहुत सारे, सामानों की लिस्ट तो है ही है। मधुबन निवासी, मैं मधुबन का शांति स्तंभ। वाह देखा कैसे नशा है माताओं को और आपकी परिक्रमा करने लगेंगे और मधुबन निवासियों के टाइटल्स जल्दी बताओ फटाफट, समय पूरा हो रहा है। मैं बाप के घर का श्रृंगार हूँ। और बाबा के गोद में पलने वाली विशेष आत्मा हूँ मैं, जो चुल पर सो दिल पर वाली आत्मा हूँ मैं तवा टू माउथ का अधिकारी हूँ। क्या हूँ? तवा टू माउथ का अधिकारी आत्मा हूँ। और गर्मा गर्म हलवा खाने वाली आत्मा हूँ, चौप चीनी खाने वाली आत्मा हूँ। और मैं डायरेक्ट पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। और मैं यज्ञ रक्षक हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन हूँ, मैं एक सम्मुख ज्ञान सुनने वाला ज्ञान का चात्रक पक्षी हूँ, मैं बाप के सिर का ताज हूँ, गले की हारा हूँ, दिल का तख्त हूँ, मस्तक का मणि हूँ, बाप के दिल के डिब्बी के अंदर रहने वाला हीरा हूँ। और कौन हूँ? यज्ञ की शोभा हूँ। आपके अपने कर्मों से बाप को, ये तो मुरली में ही आया है, अपने कर्मों से बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हूँ और विधाता को प्रत्यक्ष करने वाला हूँ। और मैं पूर्वज, ये जनरल हो गया। मधुबन आदि रत्नों की पालना में पलने वाली महान आत्मा हूँ। और रग रग में जो पालना ली है अब तक, लास्ट संडे की मुरली में था ना, जो पालना ली है वो पालना अब देने वाली हूँ। और दुआओं की अधिकारी, जनरल हो गया। और शोकेस का शोपीस हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ निवासी हूँ। मैं मधुबन के नाम उसके साथ में अपना टाइटल विशाल भवन में रहने वाली विशाल आत्मा हूँ। मैं वफादार, मधुबन से संबंधित, मैं चार धाम की यात्रा करने वाली सूक्ष्म और स्थूल वाली कौन हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ। संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा, मधुबन निवासी अर्थात फोटोकॉपी, मधुबन निवासी अर्थात अपने कर्म स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट करने वाले, मधुबन निवासी अर्थात सदा हाजी करने वाले, पहले आप करने वाले। अभी यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा, पहले आप बाबा ने कहा है, ये एक धारणा की कमी रह गई है। प्रश्न आप सभी से है, पहले आप किन किन बातों में करना है? 20 बातें, 21 बातें बताओ जिसमें पहले आप करना है। जब लाइन में खड़े हो तब, एक। दूसरा, जब स्टेज पे आने जाने की बात हो तो पहले आप। दूसरा, तीसरा, सेवा में रिजेक्टेड। दूसरा बताओ, पहले लिफ्ट में जाने के लिए पहले आप, और सोचो फटाफट किस किस में आप, ट्रेन में बैठते समय पहले आप, कार में बैठते समय पहले आप, दरवाजे से जाते समय पहले आप, और किस में पहले आप, भोजन लेते समय। देखो माता जी ने पावरफुल पॉइंट बता दिया, बस में चढ़ते समय पहले आप, भोजन में जाते समय पहले आप, और पहले आप किस किस में, मान शान जहां है उसमें, नहीं वो कौन सी जगह वो बताओ, कैंडल लाइटनिंग और स्टेज, और पहले आप किस किस में वो दूसरी बात है, पहले आप और किस में, टोली लेने में, अच्छा टोली लेने में पहले आप ले लो बाद में हम लेंगे, और खाने का हो गया, खाना खा लिया, अभी दूसरा बताओ, सीट देने के लिए, हाँ अपनी सीट पर डटे रहेंगे, डटे नहीं रहना अगर कोई पहले आप, और किस में पहले आप, पूरे हो गए 20 तो हुए ही नहीं, 21 हुए ही नहीं, पहले आप जीवन की प्रैक्टिकल घटनाएं, हाँ हॉस्पिटल में क्या, हाँ वो देखना है, नहीं तो हमने देखा है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक घंटे से रुके हैं बाहर ओपीडी में और अचानक कोई पेशेंट आ गया, अब हमारा नंबर था और वो घुस गया, पर वो ज्यादा सीरियस है, तो वो कहते हैं कि हम क्या कम सीरियस है, और किस में पहले आप, किस में, पहले आप जाओ, पहले आप खाना खाने चले जाओ, मैं तब तक सेवा करता हूँ, इसमें पहले आप। अभी दूसरा प्रश्न है, पहले मैं किस में, सेवा में मैं करूंगा, पुरुषार्थ में मैं करूंगा, पहले मैं किस में, त्याग में पहले मैं, वैराग में पहले मैं, तपस्या में पहले मैं, और पहले मैं किस में, धारणाओं में पहले मैं, प्रैक्टिकल बातें बताओ, पहले मैं किस में, ज्ञान चिंतन में, ज्ञान मनन में, ज्ञान अध्ययन में, परिस्थितियों का सामना करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, जिम्मेवारी उठाने में, पहले मैं, और किस में पहले मैं, कमजोरी छोड़ने में, और सम्मान देने में, सम्मान देने में, और त्याग तपस्या सेवा हो गया, संतुष्ट रहने में, और परिवर्तन करने में, और बाबा जो होमवर्क देते हैं वो तुरंत करने में, और सबको सुख देने में, जितनी श्रीमत की बातें हैं वो सब करने में पहले मैं। तो इसकी भी लिस्ट बनानी है, पहले आप किस में और पहले मैं किस में। मधुबन निवासी अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ने वाले, मधुबन निवासी अर्थात मास्टर ब्रह्मा, मधुबन निवासी अर्थात बाप समान स्वयं और अनेकों को अनेकों का भाग्य बनाने वाले, मधुबन निवासी अर्थात मधुरता की मूर्त, शोकेस के शोपीस, एक नामी और इकोनॉमी, सदा फॉलो फादर करने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण, पद्मा पदम भाग्यशाली, सभी के सामने सैंपल, मोस्ट लकी स्टार, सदा मधुसूदन के साथ रहने वाले, मधुबन निवासी अर्थात मधुसूदन के साथ रहने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्तियां, मधुबन निवासी अर्थात सदा खुशी में उड़ने वाले, यज्ञ रक्षक, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करने वाले, मधुरता और वैराग के बैलेंस वाले, शीश महल निवासी, इंद्रप्रस्थ निवासी, ज्ञान मान सरोवर के होली हंस, मधुबन निवासी अर्थात दिल पर सो चुल पर तवा टू माउथ के भाग्यवान, सदा मिलन मेले में रहने वाले, सदा बाप के अंग संग रहने वाले, सदा माया जीत, सदा बाप दादा के सम्मुख राज ऋषि, ऑलराउंडर सेवाधारी, सर्वंश त्यागी, प्रभु प्रेम के परवाने, कुर्बानी की दास्तान, मधुबन निवासी अर्थात कुर्बानी की दास्तान, मधुबन निवासी अर्थात सदा जागती ज्योति, नेचुरल स्मृति स्वरूप, सदा नेचुरल स्मृति स्वरूप, मुरली में आया है नेचुरल नेचर, नेचुरल संस्कार अर्थात अनादि संस्कार, ये अभी हो तब वहां नेचुरल सुख मिलेगा, सतयुग की भी बात की है, चक्कर लगाने की भी बात की है। सतयुग में क्या होगा, विमान कैसे होंगे, कैसे कैसे डिजाइन के होंगे, कैसे स्पीड से जाएंगे, एक दिन में पूरा विश्व का चक्र लगा सकते हैं हाई स्पीड, वो सारी बातें उसमें आई है। नेचुरल स्मृति वाले सदा सेफ्टी के अभेद किले में रहने वाले। तो मधुबन क्या है, सेफ्टी का अभेद, दुश्मन इसे भेद नहीं सकता, ऐसा ये अभेद किला है। मधुबन निवासी अर्थात देहभान को दलाने वाले, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर विशेष आत्मा, पुरुषार्थी आत्मा, तीव्र पुरुषार्थी, अथक पुरुषार्थी, इंटरनेशनल ब्राह्मण मॉडल, इन्वेंटर, ज्ञान चर्चा करने वाले, सदा खजानों से भरपूर, महायज्ञ का श्रृंगार, संगठन का सैंपल, बेफिक्र बादशाह, सभी सब्जेक्ट में नंबर वन, मेहनत मुक्त, दुआओं के स्टॉक से भरपूर, श्रेष्ठ लगन वाले, संस्कार मिलन की रास करने वाले, सागर के कंठे पर रहने वाले, निरंतर भट्टी में रहने वाले, अलौकिक पर्सनैलिटी वाले, सबको सुख देने वाले सुखदेव, बेहद के सेवाधारी प्रकृति और प्रकृति पति के समीप। मुरली में है, यदि अभी प्रकृति पति है तो उधर भी प्रकृति दासी होगी। सदा श्रेष्ठ संघ की लिफ्ट वाले, आशीर्वादों की खान के हीरे, लास्ट संडे की मुरली में था ना, मधुबन क्या है, आशीर्वादों की खान। तो इस आशीर्वाद की खान के हम कौन है, हीरे। रूहानी रॉयल्टी वाले, सच्चे आशिक, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे तपस्वी मास्टर दाता, एक बल एक भरोसा वाले, जीरो के साथ रहने वाले, सदा हीरो पार्ट बजाने वाले, एक्स्ट्रा भाग्य के मेडल वाले, गोल्डन चांसलर, रोज की लॉटरी के अधिकारी, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, पंचमुखी पंचमुखी, मधुबन ज्ञान सरोवर तलेटी हॉस्पिटल आबू निवासी, पंचमुखी, तरावटी माल खाने वाले, मधुबन निवासी अर्थात कौन सा माल खाने वाले, तरावटी माल खाने वाले, चौप चीनी खाने वाले, फरिश्तों की झलक और फलक वाले, सदा बाप पसंद, परिवार पसंद, लोक पसंद, एक्यूरेट दिनचर्या वाले, डायमंड हार्बर वाले, मेवा खाने वाले, सेवाधारी, चैतन्य दिल वाला का चैतन्य यादगार, सदा विश्व की स्टेज पर अलर्ट रहने वाले, विचित्र गुंबज में रहने वाले, विचित्र गुंबज, बाप दादा का विशेष श्रृंगार, एक्स्ट्रा भाग्यशाली, मेहमान नवाजी कर सदा के लिए सबको क्या बनाने वाले, मेहमान बनाने वाले, डबल पालना की लिफ्ट वाले, संगम युगी, मुगल गार्डन के चैतन्य फूल, घर बैठे सेवा के शेयर जमा करने वाले, अचल घर का यादगार स्वरूप, ज्ञान सूर्य मंडल के समीप सितारे, समाधान स्वरूप, बधाइयों के पात्र, सदा ज्ञान प्रकाश फैलाने वाले, गर्मा गर्म हलवा खाने वाले, ज्ञान योग के प्रूफ बेहद में रहने वाले, न्यारे पाए उड़ते पंछी, सदा एवर रेडी रहने वाले, सर्व आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, शुभ आशाओं के दीपक, मुस्कुराते हुए खुशबूदार फूल, प्यारे वाइब्रेशन के मास्टर सागन, बाप दादा की आंखें, सदा संतुष्ट मणि, प्योर प्योर। तो मैं मधुबन निवासी हूं, कितना श्रेष्ठ ये सम्मान है। और इसमें बाबा ने कहा, पहले आप ये नहीं सोचो कि ये सेवा मैं करूं, मेरा नाम हो, चाहे कोई भी करे, धंधा किसका है, ईश्वर का, एक का है। कहां रहने वाले, किस 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 में रहने वाले, लवलीन रहने वाले ना, अच्छा। तो सामान तो बहुत सारे हैं, हमें निकालना है, उनके स्वरूप में स्थित होना है, अनुभव करना है, खाली रटने से या केवल याद रखने से नहीं होगा, एक लेकर उसकी गहराई में जाना, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा ने मधुबन निवासियों से बात की, फिर विदेशियों से जो बोला बाबा ने, दो तीन बातें चक्कर लगाने की वो बातें कही, और भी कोई पॉइंट रह गई है कल की अवैध तो मुरली से, वरदान तो चलो ठीक है, और मुरली से अव्यक्तवाणी से, तो ऐसी जो भी अव्यक्तवाणियां आती है उसका गहराई से हमें चिंतन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, और उसमें से अपने लिए कुछ होमवर्क निकालने हैं, ताकि हमारा माइंड उसमें बिजी रहे, ठीक है। ऐसे सर्व क्या खजानों से ऐसे सदा आशिकों को, ऐसे सदा मेरा तो एक माशुक दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाली आत्माओं को, ऐसे क्या हाथ में हाथ और साथ में साथ, हाथ अर्थात और साथ अर्थात क्या, हाथ अर्थात सहयोगी और साथ हाथ और साथ, हाथ अर्थात सहयोगी और साथ अर्थात स्नेही, ऐसे स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।